सिमोन। 143 से 134 ईस्वी पूर्व। देश की बागडोर सिमोन के हाथों में। अध्याय 13। सिमोन ने सुना कि त्रिफोन ने एक भारी सेना एकत्रित कर रखी है, जिससे वो यूदा का विनाश करने वहां जाए। जब सिमोन ने यह देखा कि लोग भयभीत हैं, तो वो यरूशलेम गया और उसने लोगों को सांत्वना देकर उनसे कहा, आप जानते हैं कि मैंने, मेरे भाइयों और मेरे कुटुंबियों ने संहिता और मंदिर की रक्षा के लिए क्या क्या किया, कितना संघर्ष किया और कितने कष्ट झेले। इज़राइल के नाम पर मेरे सब भाइयों ने अपने प्राण न्योछावर किए। अब अकेले मैं ही जीवित हूं, लेकिन इस विपत्ति के समय अपने प्राण बचाने का विचार मुझसे कोसों दूर है। मैं अपने भाइयों से बढ़कर नहीं हूं। मैं अपनी जाति, मंदिर, आपकी पत्नियों और संतान का बदला चुकाऊंगा, क्योंकि सभी गैर यहूदी जातियां हमसे बैर रखती और हमारा विनाश करने एकत्र हो गई है। ये बातें सुनकर लोगों में नया जीवन आ गया। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, अब यूदा और अपने भाई योनातान की जगह आप हमारे नेता बने। आप हमारी ओर से युद्ध करें। आप जो कुछ कहेंगे हम वो करने को तैयार रहेंगे। इसके बाद उसने सभी युद्ध कुशल लोगों को एकत्रित किया, शीघ्र ही यरूशलेम की दीवारें बनवाई और नगर को चारों ओर से सुदृढ़ किया। उसने अबसालोम के पुत्र योनातान को पर्याप्त सेना के साथ याफा भेजा। वो वहां के निवासियों को भगाकर स्वयं वहां रह गया। यूदा पर त्रिफोन का आक्रमण। तब त्रिफोन एक बड़ी सेना लेकर पतोलेमाइस से यूदा देश की ओर चल दिया। योनातान भी बंदी के रूप में उसके साथ था। इधर सिमोन मैदान के एक छोर पर अदीदा में पड़ा था। जब त्रिफोन ने सुना कि सिमोन ने अपने भाई योनातान का स्थान ले लिया और वो उससे लड़ने को तैयार है, तो उसने दूत भेजकर उसे कहलवाया, मैंने योनातान को बंदी बनाकर इसलिए रखा है कि अब तक उसने अपने पदों का राज कर नहीं चुकाया। यदि आप 100 मन चांदी और बंधक के रूप में उसके दो पुत्रों को भेजें, जिससे वो मुक्त होने पर हमारा शत्रु न बने, तो हम उसे छोड़ देंगे। यद्यपि सिमोन को इस कपटपूर्ण संदेश पर विश्वास नहीं था, फिर भी उसने ये बात मान ली और चांदी तथा बच्चों को ले आने का आदेश दिया, जिससे उसके अपने लोग उससे बैर न करने लगे और उन्हें ये कहने का अवसर न मिले, उसने चांदी और बच्चों को नहीं भेजा। इसलिए योनातान का विनाश हो गया। इसलिए उसने बच्चों को और 100 मन चांदी भेजी, लेकिन त्रिफोन ने धोखा दिया, उसने योनातान को मुक्त नहीं किया। इसके बाद त्रिफोन ने देश का विनाश करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। वो चक्कर लगाकर अदोरा की ओर बढ़ा। वो जहां जहां जाता था, सिमोन और उसकी सारी सेना वहां वहां उसका सामना करती। यरूशलेम के गढ़ के लोगों ने त्रिफोन के पास आदमी भेजकर कहलवाया कि वो उजाड़ खंड के मार्ग से जल्दी ही आ जाए और उनके लिए खाद्य सामग्री भेजे। त्रिफोन ने वहां जाने के लिए सब घुड़सवार तैयार कर लिए, किंतु उस रात इतनी बर्फ गिरी कि वे वहां नहीं जा सके। तब वो पड़ाव उठाकर गिलाद गया। जब वो बसकामा के निकट पहुंचा, तो उसने योनातान का वध कराया और वो वहीं दफनाया गया। इसके बाद त्रिफोन मुड़कर अपने देश रवाना हुआ। मोदीन का मकबरा। सिमोन ने आदमी भेजकर अपने भाई योनातान की अस्थियां मंगवाई और उन्हें अपने पिता के नगर मोदीन में दफना दिया। उसके लिए सभी इसराइलियों ने बड़ा भारी शोक मनाया और वे उसके लिए बहुत दिन तक विलाप करते रहे। सिमोन ने अपने पिता और अपने भाइयों की कब्रों पर एक मकबरा बनवाया जिसके पीछे और सामने के पत्थर चमकदार थे और वो इतना ऊंचा था कि वो बहुत दूर से दिखाई देता था। उसने अपने पिता, अपनी माता और अपने चार भाइयों के नाम पर एक पंक्ति में 7 स्तूप बनवाए। उसने कलात्मक ढंग से उन स्तूपों के चारों ओर ऊंचे स्तंभ बनवाए और मृतकों की चिरस्थायी स्मृति के लिए उन स्तंभों पर अस्त्र शस्त्र और पोत खुदवाए जिससे समुद्र की यात्रा करने वाले सभी लोग उनके दर्शन करें। वो मकबरा जिसे उसने मोदीन में बनवाया था आज भी वहां विद्यमान है। सीरिया से इज़राइल की स्वतंत्रता। त्रिफोन ने राजा अंतियोख को, जो अभी वयस्क नहीं था, धोखा देकर मरवा डाला और उसके स्थान पर स्वयं राजा बन गया। इस तरह उसने एशिया का मुकुट अपने सिर पर धारण किया और देश पर भारी विपत्तियां ढाईं। इधर सिमोन ने यहूदियों के गढ़ों का पुनर्निर्माण किया और उन्हें बुर्जों, बड़ी दीवारों और अरगलाएं लगे फाटकों से घिरवा दिया। उसने उन गढ़ों में खाद्य सामग्री रखवाई। इसके बाद सिमोन ने आदमी चुनकर राजा डेमेत्रियस से यह निवेदन करने को भेजा कि वो यहूदिया को कर में छूट दिलाए, क्योंकि त्रिफोन देश को लूटता रहा था। डेमेत्रियस ने उसे अनुकूल उत्तर दिया और उसके नाम ये पत्र लिखा। राजाओं के मित्र प्रधान याजक सिमोन, यहूदियों के नेताओं और जनता को राजा डेमेत्रियस का नमस्कार। आप लोगों ने जो सोने का मुकुट और खजूर की डाली हमें भेजी है वो हमें मिल गई है। हम आपके साथ स्थायी शांति की संधि करने और आपको छूट देने के लिए अपने पदाधिकारियों को लिखने को तैयार हैं। हम आप लोगों को जो छूट दे चुके हैं वो वैसी ही रहेंगी। आप लोगों ने जो गढ़ बनवाए हैं उन पर आप लोगों का अधिकार रहेगा। यदि आपने आज तक किसी बात में ढिलाई की हो या आपसे कोई भूल हो गई हो और आपने राज उपहार नहीं भेजा हो तो हम उन सब की माफी देते हैं। यदि यरूशलेम में और कोई लगान वसूल किया जा रहा हो तो वो आगे नहीं लिया जाएगा। यदि आपके बीच ऐसे व्यक्ति हों जो हमारे अंगरक्षक बनने के योग्य हैं तो वे भर्ती होने के लिए आए। हमारे और आप लोगों के बीच शांति बनी रहे। 117वें वर्ष यहूदियों पर से अन्य जातियों का जुआ उठा लिया गया। उस समय से लोगों ने लेखों में इस प्रकार लिखना शुरू कर दिया। यहूदियों के सर्वश्रेष्ठ प्रधान याजक, सेनापति और शासक सिमोन के पहले वर्ष में। गेजेर पर सिमोन का अधिकार। उस समय सिमोन ने गेजेर के विरुद्ध प्रस्थान किया और उसे अपनी सेना से घेर लिया। उसने एक युद्ध यंत्र बनवाकर उसे नगर की दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया। एक बुर्ज पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में किया। जब उस यंत्र के आदमी नगर में घुसे तो नगर में भारी कोलाहल मचा। नगरवासी स्त्रियों और बच्चों को लेकर दीवार पर चढ़ गए, अपने कपड़े फाड़ने लगे और ऊंचे स्वरों में सिमोन से निवेदन करने लगे कि वो उन पर दया करे। उन्होंने कहा, आप हमारी दुष्टता के अनुसार नहीं बल्कि अपनी दया के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करें। सिमोन ने उनकी बात मान ली और उन पर आक्रमण नहीं किया, किंतु उसने उन्हें नगर से भगा दिया और उन घरों का शुद्धिकरण करवाया जिनमें देव मूर्तियां थीं। फिर उसने भजन और धन्यवाद के गीत गाते हुए नगर में प्रवेश किया। उसने नगर से सारी अपवित्र वस्तुएं हटा दी और उसमें ऐसे आदमी बसाए जो संहिता का पालन करते थे। फिर उसने उसे किला बंद किया और वहां अपने लिए एक आवास बनवाया। यरूशलेम के गढ़ पर अधिकार। यरूशलेम के गढ़ में पड़े हुए लोगों को देहात में आने जाने और खरीद बिक्री करने से रोका जाता था। उन्हें इतनी तकलीफ होने लगी कि उनमें कई लोग भूखों मर गए। इसलिए उन्होंने सिमोन से शांति का निवेदन किया और उसने उनकी बात मान ली। उसने उन्हें गढ़ से निकाल दिया और मूर्ति पूजा के दूषण से गढ़ का शुद्धिकरण किया। उन्होंने 171वें वर्ष इस वर्ष के दूसरे महीने के 23वें दिन स्तुतिगान करते हाथ में खजूर की डालियां लिए सितार मजीरा और वीणा बजाते हुए स्त्रोत्र और भजन गाते हुए उसमें प्रवेश किया, क्योंकि इज़राइल से एक विकट शत्रु हटाकर नष्ट कर दिया गया था। सिमोन ने प्रतिवर्ष उल्लास के साथ ये दिन मनाने का आदेश दिया। उसने पर्वत का वो भाग जिस पर मंदिर अवस्थित था और जो गढ़ से सटा हुआ था पूरी तरह सुदृढ़ कर दिया और वहीं अपने लोगों के साथ रहने लगा। जब सिमोन ने देखा कि अब उसका पुत्र योहन बड़ा हो गया है तो उसने उसे अपनी समस्त सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया और वो गेजेर में रहने लगा।